ज्यादा तक, और हम देख रहे थे उनको, एक योगी कैसे सोते हैं, इतनी बड़ी संस्था, देश विदेश में जिसके सेवा केंद्र है, हजारों लाखों लोग जिसमें हैं, और उसकी संचालिका, उसको चलाने वाले जो है वो इस तरह से निश्चिंत भाव से, निर्विकार भाव से, निश्चल मुद्रा, ऐसी संपूर्ण बोझ रहित अवस्था में सो रहे हैं। कुछ समय के बाद दादी ने अचानक से आंख खोली, बहुत धीरे से, और आंख खोलते ही एकदम चेहरे पर मुस्कुराहट। ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा हो, आंख खोले और तुरंत मुस्कुराए। हमने तो कभी देखा नहीं किसी को, कोई बहुत गहरी नींद में है, उसको उठाया और उठते ही आंख खोलने से भी पहले ही होठों पर मुस्कुराहट। दादी ने आंख खोली, होठों पर मुस्कुराहट, और दादी एकदम बोलने लगी। अभी लेटे लेटे ही है और बोल भी क्या, तो ज्ञान सुनाने लगी तुरंत। अभी किसी ने कुछ पूछा नहीं, किसी ने कोई बात नहीं की, उन्हें पता भी नहीं कि सामने कौन बैठा है, आसपास कौन है। आंख खुली, मुस्कुराहट और ज्ञान चालू। बाबा कहते हैं, बाबा ऐसे कहते हैं, कैसी अवस्था है ये। स्वप्न में भी क्या चल रहा होगा, अंदर चिंतन में क्या चल रहा होगा, क्या वो वास्तव में नींद थी या योग ही था, क्या था, क्या आंख खोलने के बाद मुस्कुराहट थी या मुस्कुराहट पहले से ही थी, क्या वो स्वप्न में थी, क्या वो नींद में थी या जागृत अवस्था में थी, या वो सोना भी जागना ही था, क्या वो नींद थी, क्या वो योग था, क्या था, हम सोच रहे थे। कैसी ये अवस्था है कि जिसमें किसी ने कुछ कहा नहीं, पूछा नहीं, बोला नहीं, ज्ञान की कोई चर्चा चल नहीं रही, समय कौन सा है, सुबह उठते ही आंख खोलना, मुस्कुराहट और ज्ञान चालू। कितना अघात प्यार होगा उसके प्रति। कैसा विश्वास होगा ईश्वर के प्रति। कैसा संबंध बनाया होगा उसके प्रति। जो कि स्वप्न में भी नहीं टूटता, नींद में भी नहीं टूटता, इस आयु में भी नहीं टूटता, देह की बीमारियां भी जहां बाधा नहीं बन रही है, बीमारियां बहुत है, हिसाब किताब भी है, परंतु उनके लिए वो हिसाब किताब नहीं है, उनके लिए वो कुछ है ही नहीं। दादी को हम अगर पूछते हैं रात में कोई तकलीफ हुई तो कहते हैं इनको पूछो, जो आसपास वाले, मुझे नहीं पता, ये बताएंगे क्या तकलीफ हुई। कल क्या बोला वो पता नहीं, आज कर्म कर रहे हैं और निष्काम, उसका कोई वर्णन नहीं। ऐसा प्रेम, ऐसा निश्चय, ऐसा अटूट संबंध उस निराकार से, ये सब है, इसलिए ही आज ये स्थिति प्राप्त है। सारे जगत का सम्मान प्राप्त है। सूफी कहानी है लैला और मजनू की, बाबा भी कभी कभी याद करते हैं। शायद ही ऐसे कोई प्रेमी इस संसार के इतिहास में होंगे। दिखाया है कि मजनू लैला के अतिरिक्त और किसी को देखना नहीं चाहता था। पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने कहा, अगर लैला न दिखे तो मैं किसी को देखूंगा ही नहीं। आंखें बंद कर ली। कहानी बताती है कि भगवान स्वयं उतर कर नीचे आए और उसको कहने लगे कि मजनू देख, कौन आया है? मैं आया हूं, स्वयं भगवान। मजनू कहता है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, जाओ यहां से। वो कहते, अरे मैं वही खुदा ताला हूं, वही अल्लाह हूं, जो कभी खुद किसी के पास नहीं जाता। मुझे पाने के लिए लोग बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, फिर भी मैं सबको नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता हूं। मजनू कहता है, अगर तुम लैला बन के आओ तो ही मैं तुम्हें देखूंगा, वरना नहीं। वो तो लौकिक प्रेम है, जो अपने प्रेम के अतिरिक्त और किसी को देखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, उससे बात करना नहीं चाहता, ऐसा अगाध प्रेम। ऐसा ही प्रेम उस एक से हो जाए, ऐसा ही संबंध उस एक से जुड़ जाए, ऐसा ही निश्चय उस एक पर हो जाए, तो यह जीवन सार्थक हो जाए। फिर हमें कुछ करना नहीं होगा, वो सब कुछ करेगा। हमें कुछ मांगना नहीं होगा, वो स्वतः ही मिलेगा। बाइबल में दिखाया है, जीसस क्राइस्ट के शिष्य उससे कहते हैं, जब जीसस उससे कहता है उन सभी से कि जाओ मेरा संदेश सबको सुनाओ, वो कहते हैं, वो तो सब ठीक है पर हम सुनाएंगे क्या? हमें तो बोलना ही नहीं आता, हमने कभी भाषण किया ही नहीं है। वो कहते हैं, हम पहनेंगे क्या? हम खाएंगे क्या? कहां कहां जाए? बाइबल में अद्भुत महावाक्य है, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto it. सबसे पहले ईश्वर और ईश्वर का साम्राज्य प्राप्त करो और बाकी संसार की सारी चीजें जो है वो स्वतः ही आ जाएगी। पहले भगवान को पालो, फिर बाकी चीजें आ जाएगी। उसको छोड़कर अगर संसार को पाओगे पहले, तो ना तो वो हाथ में आएगा और ना ही संसार। Seek ye first the kingdom of God, परमात्मा का राज्य, ईश्वर का राज्य पहले प्राप्त करो तो संसार पीछे पीछे आ जाएगा। उसे पा लेना, उसे जान लेना, उसे समझ लेना, उसके प्रति अपने जीवन को समर्पण कर देना, उसी की राह पर निकल पड़ना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ। सब इसमें नहीं चल सकते। आज वरदान में बाबा ने तीन बातें कही है। कौन सी तीन बातें? सबसे पहली, तोड़ मोड़ना, दूसरी मोड़ना और तीसरी जोड़ना। ये सब क्या है? तीनों बातें पढ़ाई का, ज्ञान का सार है। तो तीसरी बात कौन सी थी? जोड़ना, टू ज्वाइन। क्या जोड़ना है? सर्व संबंध जोड़ना है। किससे जोड़ना है? एक बाप से जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्यों जोड़ना है? जबरदस्ती? क्यों जोड़ना है? वर्षा लेना है करके, अच्छा, और सच्चे साथी और दुनिया वाले झूठे। सुरनर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ हित सब करही प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, संसार में सभी लोगों की प्रीत कैसी है? स्वार्थ पूर्ण प्रीत है। कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता, दिखावा मात्र है। लगता है ये सच्चा है पर है नहीं। इस संसार में सच्चा प्रेम करने वाला केवल एक ही है। इस संसार में यदि सर्व संबंध जोड़ना है तो एक ही से जोड़ना है, और उसका आधार है प्रेम। तो आज हम चर्चा करेंगे वह परमात्मा, वह ईश्वर, वह निराकार, वह अनाकार, उससे प्रेम कैसे करें, कैसे उससे सारे संबंध स्थापित करें, कैसे उन संबंधों को निभाए, क्या करें कि जो उससे प्रेम हो जाए, या फिर उससे प्रेम करना अर्थात क्या, प्रेम की परिभाषा क्या है, उससे प्रेम क्यों करना है, उससे प्रेम करना अर्थात क्या करना और कैसे करना, और कैसे उसके प्रति प्रेम को बढ़ाए। तो क्या है इन सभी प्रश्नों के उत्तर? तीन बातें, उसमें तीसरी बात है जोड़ना, सर्व संबंध एक बाप से जोड़ना। जोड़ने का आधार है संबंध, और संबंध का भी आधार है प्रेम। तो कैसे उसके प्रति प्रेम करे, उससे प्रेम करे और सबसे अधिक प्रेम करे, क्या करे कि उससे प्रेम बढ़ जाए, क्या करना चाहिए? माताओं की तरफ से क्या करे कि बाबा से प्रेम बढ़ जाए? आज जितना प्रेम कर रहे, कल का दिन जब आएगा हमारा प्रेम बढ़ा हुआ होगा। समर्पण कर दे और सर्व संबंधों से याद करेंगे और ट्रस्टी बनकर रहेंगे, आज की मुरली में भी कहा है, और दुनिया बातों से बुद्धियों घटाओ और इधर लगाओ। भक्ति में इसको कहते हैं ईश्वरे अनुराग विषये विराग। विषयों से विराग और ईश्वर के प्रति अनुराग, प्रेम, आसक्ति, अट्रैक्शन, लव, अफेक्शन, कोई भी शब्द कहो। और क्या करें जिससे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाए, ट्रस्टी बन जाए, न्यारा बन जाए, दुनिया से बुद्धियों हटा दे और आत्मिक स्वरूप में स्थित रहे। आत्माभिमानी, आज की मुरली में रूह अभिमानी तुम्हें बनना है। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? रूह अभिमानी तुम्हें बनना है। यह रूहानी सत्संग है मुरली की शुरुआत। यह रूहानी संप्रदाय है, रूहानी कुल है, रूहानी परिवार है। तो क्या हम और करें कि जिससे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाए? ऐसा क्या कर दे कि ऊपर से फूलों की पुष्पा हो जाए, पुष्प की वर्षा हो जाए हमारे ऊपर, भगवान आकर खड़ा हो जाए और पुष्प बरसाए, सर्वबंधन मुक्त, एक की याद और जो बाप बाप के गुण है और जो कर्तव्य है वही धारण करना, उसके याद में हर कर्म करना, कर्म योगी बनकर कर्म करना और हर समय संतुष्ट रहना। संतुष्ट हो सततम योगी, गीता के वचन है। योगी वह है जो हर समय संतुष्ट रहता है, जो भी परिस्थिति आए, जैसी भी परिस्थिति आए, उसमें जो सदैव संतुष्ट रहता है। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, जैसे वो रखे। थाय विल शैल बी डन, तेरी इच्छा, हमारा कुछ नहीं। ऐसा समर्पण भाव जहां है, ऐसी संतुष्ट तथा जहां है, वहां भगवान से प्रेम बढ़ सकता है। और क्या करे, आंखों में वही समाया हुआ हो और कोई समाया हुआ न हो। ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा के ज्ञान से भगवान से प्रेम कैसे बढ़ेगा? ड्रामा के ज्ञान से परिस्थिति में अचल उड़ल रह सकते हैं, प्रेम बढ़ जाए, प्रेम, बुद्धि क्लीन हो, क्लियर हो, ये योगी के लक्षण है। और निश्चय हो, है उसका परिचय जन जन को सुनाना, कोई अटैचमेंट नहीं रखना, कोई आसक्ति नहीं रखना, संसार से अनासक्त हो जाना, न्यारे हो जाना। और महसूस प्यार ने बढ़ाना कैसे, बढ़ाए कैसे? आज इतना है 10%, कल 20% कैसे हो जाए? आज 50% है, कल 80% कैसे हो जाए? हमको खुद लगे कि हमारा प्यार बढ़ गया है, नशा चढ़ जाए। नशा तो उसका परिणाम है, प्यार इतना बढ़ गया है कि नशा चढ़ गया है। और निरंतर याद, और जो सुनाए उसका स्वरूप बन जाए, नष्टो मोहा बन जाए। और बाबा से श्रीमत पर चले तो उससे प्यार बढ़ जाए। और ये तो सभी कर रहे हैं जितने पॉइंट्स बताए, फिर भी तो नहीं बढ़ रहा है। बढ़ क्यों नहीं रहा है? फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इंच इंच बढ़ रहा है, रफ्ता रफ्ता। हाँ, क्या क्या इन दोनों में थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। फिर वो दिन भी आएंगे जब थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं, बढ़ता रहेगा। क्या और करे कि भगवान से प्यार बढ़ जाए? बछली जैसे पानी बगैर नहीं रह सकती, वैसे ब्राह्मणों का संसार ही बाबा है। संसार से बाहर निकालो और मछली की मृत्यु हो जाती है, वैसे। पर वो कैसे हो? ज्ञान की गहराई में उतर कर। और निश्चय पूरा हो गया। निश्चय, ऐसा कोई है यहाँ पे जो कहेगा कि हमें निश्चय थोड़ा कम है? ऐसे जो जो है महारथी वो हाथ खड़ा करो, जो कहते हैं कि हमारा निश्चय अभी पूरा नहीं है, हमारा निश्चय अभी कम है। ऐसे कौन कोई है जो कहते हैं कि बाबा से प्यार हमारा थोड़ा कम है? कोई है ऐसा? शायद ही कोई होगा जो ऐसा कहे कि हमारा प्यार कम है। मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्रता का पालन करना तो उससे प्यार बढ़ जाए। और क्या क्या? बाबा मेरा संसार, वो बोल दिया, बाप ही मेरा संसार है। उसी को संसार बना लेना, उसी को अपना जहान बना लेना। एक के प्रति समर्पण भाव, एक के प्रति संपूर्ण निष्ठा, एक के प्रति निश्चय बुद्धि, एक से प्यार, एक की याद, एक से सर्व संबंध। बाबा से प्यार बढ़ाने के लिए और क्या करे? बेहद का वैराग धारण कर ले, सच्चाई और सफाई को जीवन में धारण कर ले तो उसका प्यार वहां आ जाए। फरमान बरदार बने और फॉलो फादर करे। और प्यूरिटी, कर्मेंद्रिय जीत बन जाना, स्वराज्य अधिकारी बन जाना, कर्मेंद्रिय जीत बन जाना। जिसे हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया। मिल तो गया पर प्यार कैसे बढ़ाए। अब नशा होना चाहिए, अभी कब तक चलेगा नशा कि भगवान पढ़ा रहे भगवान पढ़ा रहे। एक दिन ठीक है, दो दिन ठीक है, दस दिन ठीक है, बीस दिन ठीक है, एक छह मास भगवान पढ़ा रहे तो नशा तो थोड़ा कम हो जाएगा क्या? हाँ, एक ही नशा कितना समय चलाओगे? दस साल भगवान मिला, भगवान मिला, भगवान पढ़ा, रोज ही पढ़ा रहा है, हर बार उसकी मदद का अनुभव करे और अनुभव करे कि वो मदद कर रहा है, मदद कर रहा है, तो प्यार बढ़ेगा। और भगवान हमारे साथ है यह अनुभव करे तो प्यार बढ़ेगा। और पवित्र बने, योगी बने, वो सब हो गया। और इधर से पीछे से आवाज कम है। हाँ, अशरीरी होना, आत्म अभिमानी होना, रूह अभिमानी होना, हाँ, इच्छाओं को कम करना, इच्छा मात्र अविद्या बनना और नष्ट मोह हो गया। जो हो गया वो मत बताओ वापस वापस, अलग अलग शब्दों में एक ही बात थी। और याद में रहना हो गया। कितना देर याद में रहेंगे? निरंतर बाबा से, हाँ, बाप से जो प्राप्ति हुई है उसको याद करने से, उसने जो हम पर उपकार किए हैं, यह है सबसे पहला अंतर। प्यार कैसे बढ़ेगा? वो सारी अब तक जो बातें बताई वो तो है ही, परंतु जिससे प्यार बढ़ाना है उसने हमें क्या क्या दिया है, क्या क्या उसने उपकार किए हैं हमारे ऊपर, यदि वो न मिलता तो हम कहां होते, यदि जीवन में वो न आता तो हम कहां होते। उसने इतने उपकार किए, इतने उपकार किए, कभी रुक कर उसे धन्यवाद किया है? उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड, सच्चे दिल से उसका शुक्रिया करना, धन्यवाद करना, थैंक यू करना, क्या क्या उपकार किए हैं, हमने उससे क्या क्या पाया है, कौन कौन सी प्राप्ति हुई है, कौन कौन सा भाग्य हमें मिला है, उसकी लिस्ट बनाना, लिखना, याद करना, स्मरण करना, बार बार याद करना कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया है। जैसे ही आत्मा उन उपकारों में, उपकारों को याद करती है, गीत भी है हमारा एक, उपकार तुम्हारा बाबा, इन शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल ने जो पाया है कैसे मैं बतलाऊं, उसने जो उपकार किए हैं, उसकी असीम अनुकंपा हुई है, उसकी असीम कृपा हम पर बरसी है, क्या ये उसकी कृपा नहीं है कि हम यहां आ गए? भक्ति के शब्द है सारे, कृपा दया आशीर्वाद। पर अभी अभी मुरली चली थी बाबा की, कृपालु और दयालु बनो, क्योंकि बाप स्वयं कृपालु और दयालु है। अगर उसकी कृपा और दया ना होती तो क्या आज हम यहां होते? जाकर देखो बाहर क्या हो रहा है और बाहर संसार के लोग क्या कर रहे हैं इस समय, और हम क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे षड्यंत्र और कैसे कैसे विकारों में फंसे हैं लोग, और हम यहां आज बैठे हैं इस पवित्र वातावरण में, क्या ये उसकी कृपा नहीं है? क्या ये उसकी दया नहीं है? हमारा मन जो आज इतना शांत होकर यहां बैठा है, क्या ये उसकी दया नहीं है? उसी के सभी उपकारों को याद करना, इतना याद करना कि आंखों से अश्रुधारा बह जाए। संसार में लोग रोते हैं, उन आंसुओं का कोई महत्व नहीं है, एक दूसरों के लिए रोते हैं, देहधारियों के लिए रोते हैं, स्वार्थ के कारण रोते हैं, मगरमच्छ के आंसू भी होते हैं, पर हमारे जो आंसू है वो किसी देहधारी के लिए नहीं है, किसी संसारिक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी स्वार्थ से नहीं निकले हैं वो आंसू। हृदय में जो प्यार है वो अभिव्यक्त हो रहा है। ये प्रेम के आंसू मोती है, आंसू नहीं है, जिसे भगवान कहता है मैं तुम्हारे एक एक आंसू के बूंद को अपने हृदय की डिब्बी में रखता हूं। अमूल्य आंसू है ये। परंतु बहुत कीमती है, ऐसे ही नहीं आ सकते। ऐसा शुद्ध हृदय चाहिए, उसी में ईश्वरीय प्रेम प्रकट होता है और तभी आंसू आ सकते हैं। उतना ही त्याग चाहिए, उसके सिवा ये आंसू नहीं आ सकते, कोई चाहे भी तो नहीं ला सकता। बहुत कीमती आंसू है ये, किसी योजना के अंतर्गत इसे नहीं लाया गया है, कोई दिखावे के लिए इसे नहीं लाया गया है, किसी आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स डालकर इसे लाया नहीं गया है, स्वतः निकले हैं। ऐसे आंसू आ जाए, किन किन को आते हैं? भगवान के लिए आंसू आ जाए। इस सभा में ऐसे कितने हैं जो आज तक केवल और केवल भगवान के लिए रोए हैं और किसी भी देहधारी के लिए उनके आंखों से आंसू नहीं आए? ऐसे भी कोई है? कभी नहीं आए किसी भी देहधारी के लिए, किसी परिस्थिति के लिए नहीं, ना ही किसी देहधारी के लिए, ना ही किसी मित्र के लिए, ना ही किसी संबंध के लिए, कोई भी मनुष्य आत्मा के लिए आंसू नहीं आए। इस जन्म में बाबा के बनने के बाद वो हाथ खड़ा करो, बहुत अच्छा, तालियां बजानी चाहिए उनके लिए। केवल और केवल ईश्वर के लिए हमारे आंखों से आंसू है और किसी भी देहधारी के लिए नहीं। हमारे आंसू इतने कीमती है कि संसार के लोग और संसार की परिस्थितियां, इन आंसुओं के सामने इनकी क्या कीमत है? हमारे आंसुओं की कीमत 1 करोड़ है, तो संसार के लोग और परिस्थितियां 5 पैसे की है। कभी भी अपने आंसुओं को इन लोगों के लिए और इन परिस्थितियों के लिए खर्च न करना। वो केवल और केवल उस एक के लिए आए। तो भगवान से प्यार बढ़ाने की पहली विधि है उसके उपकारों को याद करना। दूसरा, जो उत्तर बता दिए वो मत फिर बताओ, दूसरे बताओ और ऐसा क्या करे कि उसे उससे प्यार बढ़ जाए। क्या करे कि बहुत प्यार बढ़ जाए उससे, हमें खुद ही अनुभव हो। बाबा से प्रीत जोड़ना, बाबा से प्रीत जोड़ी है, उसको बढ़ाने के लिए क्या करे वो बताओ। जोड़ी तो है, उसकी महिमा करना ये एक दूसरा है, वो उपकार में आ जाएगा, परंतु इसको हम फिर भी दूसरा ले सकते, उसके गुणगान गाना, उसकी महिमा करना, बहुत गुणगान गाना, बहुत महिमा करना, मन ही मन महिमा करना, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी के सामने नहीं, मन ही मन एकांत में गुणानुवाद। भक्ति में शब्द है गुणानुवाद, भगवत गुणानुवाद, भगवान की स्तुति गाना। भक्ति में जो भजन है और कीर्तन है वो सब क्या है, कहां से निकला है वो, उसकी भी आधार शीला संगम युग है। हमने जो अब बाप की महिमा गाई, एक हमने जो एक दूसरे की महिमा गाई, वही भक्ति में कीर्तन बनेंगे और भजन बनेंगे। एक मुरली अव्यक्त वाणी अभी अभी चली थी 3-4 मास पहले, यहां क्या होता है और भक्ति का आधार क्या है, संगम युग मुरली का टाइटल था। भक्ति मार्ग का आधार संगम युग, याद आई मुरली? अभी अभी चली थी कुछ मास पहले, उसमें यह पॉइंट था कि यहां तुम बाप की महिमा करते हो तो वहां भक्त फिर देवी देवताओं की या भगवान समझकर उनकी महिमा करते हैं। तो बाबा की महिमा करना, अब प्रश्न है सभी से, क्या कहे बाबा को और कैसे महिमा गाए उसकी। वर्णन करूं कैसे, गीत है ना, तूने प्यार दिया इतना वर्णन करूं मैं कैसे। क्या महिमा गाए और क्या उसको कहे वो बताओ। तुम पतित पावन हो, थोड़ा पावरफुल बताओ। क्या महिमा गाए, वाह 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 वाह। क्या, क्या से क्या बना दिया, हम क्या थे और क्या उसने बना दिया, हम कहां पड़े थे। बाबा ने एक मुरली में कहा था तुम कचरे के डिब्बे में पड़े थे, मैंने तुमको आके वहां से निकाला है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि तुम भक्ति में इतने डूब गए थे, भक्ति के दलदल में तुम्हारा केवल एक बाल दिख रहा था, उस बाल को पकड़कर मैंने तुम्हें खींचकर बाहर निकाला है। साकार महावाक्य है बाबा के। तो कहां पड़े थे और क्या बना दिया, चरणों में जगह मांगी थी तूने दिल में बसा लिया। कोई उल्टा गाने वाला है इधर, दिल में जगह मांगी थी और यहां आने के बाद चरणों में बिठा दिया, ऐसे भी कोई है, कोई कोई ऐसे भी है। तो कहां थे और कहां आ गए, कहां जा रहे थे और कहां पहुंच गए, याद करना। अपने ही जीवन को देखो और उसके गुणगान गाओ। और क्या कहेंगे उससे, क्या गुणगान गाएंगे उसका। क्या क्या, जैसे पानी सागर में पानी, वो तो वर्णन किया, गुणगान क्या गाएंगे उसके सामने। जैसे कोई व्यक्ति हमारे सामने है और उसने हम पर बहुत उपकार किए हैं और अब वो अचानक सामने आ गया, तो हम क्या कहेंगे उसके उसके प्रति। और प्यार वाले शब्द बताओ बाबा के लिए, ऐसे वाक्य बताओ जिससे प्यार प्रकट हो रहा है हमारा। जो दुनिया पा नहीं सकती वो हमने पा लिया। और वाह रे मेरा भाग्य, वाह रे बाबा वाह, सब कुछ वाह। और क्या कहे, सोचो भगवान आज शाम को आपके घर में आ जाए, अव्यक्त बाप दादा स्वयं अचानक आपके सामने आके खड़े हो जाए तो क्या करोगे। क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, किस तरह सुनाए। और उससे क्या कहेंगे, वो एकदम सामने खड़ा है हमारे। सबने ठुकराया, आपने हमें अपना बनाया। और सोचो आज शाम को 6 बजे वो हमारे घर आने वाला है, टाइम भी दे दिया है उसने कि इतने बजे मैं तुम्हारे घर में आऊंगा। वो नहीं बताया क्या करो, वो अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो करना है करो। कैसे उसका स्वागत करोगे, क्या बोल उसके बोलोगे, कौन सा अभिनंदन पत्र उसके लिए लिखोगे। आज तक तो मेहमान आते रहे, दूसरे लोग आते रहे, सोचो भगवान का सुबह सुबह फोन आ जाए कि आज शाम को मैं आ रहा हूं, और फोन रख दे। हाँ, सबको बुलाएंगे। सबको बुलाएंगे। नहीं, हम क्या करेंगे, मुझे अभी ये प्रश्न है आप सभी से शाम को 6 बजे भगवान आपके घर आने वाला है, आप क्या क्या तैयारी करेंगे? उसमें सब कुछ आ गया, क्या क्या करेंगे वो बताओ। माताएं क्या क्या करेगी? भगवान शाम को घर आने वाला है, सबसे पहले या तो फोन पे लग जाएंगे, भगवान आ रहा है, भगवान आ रहा है, हमारे घर आ रहा है, हमारे घर आ रहा है। हर कर्म से, हर कर्म उसके लिए करेंगे, वो तो रोज भी करते हैं, थोड़ा ज्यादा करेंगे। क्या करेंगे? घर की साफ सफाई चालू कर देंगे, भाई लोग घर की साफ सफाई चालू करेंगे, माताएं हृदय की साफ सफाई। कौन सी कर रहा है, क्या करना है? भगवान आ रहा है, या फटाफट ग्रुप बना देंगे और उसमें मैसेजेस भेज देंगे कि भगवान हमारे यहां आ रहा है, हमारे यहां आ रहा है, हमारे यहां आ रहा है। क्या करेंगे? भोग तैयार करेंगे। अच्छा, एक तो साफ सफाई करेंगे, इधर बताया घर की साफ सफाई, दूसरा इन्होंने बताया भोग लगाएंगे, तीसरा स्थिति की तैयारी करेंगे, और कैसे स्वागत करेंगे उसका। वह आ रहा है अखिल ब्रह्मांड नायक, वह आ रहा है सृष्टि का नियंता, वह आ रहा है गीता का भगवान, गीता सुनाने, वह आ रहा है जिसके परे इस संसार में और कोई नहीं है, वह आ रहा है जिसके लिए युगों से हमने तपस्या की है और कभी सोचा नहीं था कि वह हमारे घर आएगा। घर हम तो हमेशा उससे मिलने जाते हैं मधुबन, पर आज वो हमारे घर आया, आ रहा है। तो क्या तैयारी करेंगे? जैसे थोड़ा और विस्तार, प्रैक्टिकल बातें बताओ। हाँ, बाबा की गोदी में चले जाएंगे आते ही। अच्छा ठीक है, और उसकी यादों में खोए रहेंगे सारे दिन भर, और घर का वातावरण शक्तिशाली बनाएंगे, पावरफुल बनाएंगे, क्योंकि वो ऐसे वैसे घर में नहीं आता है, वो जहां पवित्र स्थान होता है बस वहीं आता है। वो रामायण में दिखाया है कि राम पूछता है ऋषियों से, मैं कहां रहूं, 14 साल बिताने हैं। पहला उत्तर ऋषि देते हैं कि राम जाकर उस हृदय में रहो जो पवित्र है। बाद में बताते हैं पंचवटी रहो या कहां रहो, हृदय में, उस हृदय में भगवान निवास करते हैं जो पवित्र है, उस घर में वो आता है जो पवित्र है, जहां पर अपवित्र संकल्प और स्वप्न मात्र भी नहीं है। ऐसे ही घर में वो प्रवेश करता है, नहीं तो ऐसा होगा वो आएगा, घर का वातावरण देखेगा और ऐसा ना हो लौट जाए, आएगा और देखेगा कि बर्तन बर्तन से टकरा रहा है, आएगा और देखेगा एक पहिया आगे एक पहिया पीछे और वापस लौट जाए, आएगा और देखा यहां विकारों की बदबू है, आएगा और देखेगा इस घर में वह पवित्रता नहीं है, वापस लौट जाएगा, आएगा और देखेगा ये परचिंतन करते हैं, परदर्शन करते हैं, व्यर्थ बातों में रुचि रखते हैं। वो आया है खड़ा और हम देख रहे हैं टीवी, तो रुकेगा वो वहां? प्यार से उसको याद करना, प्यार से उसकी महिमा करना, ये भी एक विधि है उसके प्यार को बढ़ाने की। सभी के लिए होमवर्क है कि बाबा यदि सामने आ जाए तो उससे हम क्या क्या कहें। 25 बातें सबको लिखनी है। यदि बाबा सामने आ जाए तो हम उससे क्या क्या कहेंगे। एक तो ये भी कह सकते हैं, हमारे यहां ये प्रॉब्लम है इसको ठीक कर दो, हमारे यहां वो ठीक नहीं है उसको ठीक कर दो, ऐसा भी कह सकते हैं कोई कोई। कंप्लेंट्स, दूसरी विधि थी ये। तीसरी विधि जिससे भगवान के लिए प्रेम बढ़ जाए, ये अगर कोई ये होमवर्क करे, उसके बाद आप वो नहीं रहोगे जो अभी हो। भगवान के लिए जो प्यार है वो स्वतः ही बढ़ जाएगा, क्योंकि आप सोच रहे हो, याद कर रहे हो, अपने ही जीवन को देख रहे हो, और फिर पता चलेगा कि क्या क्या उसने किया है, क्या करे उसके लिए। तीसरी विधि जिससे बाबा के लिए प्यार बढ़ जाए, पहला उपकार, दूसरा गुणगान, और तीसरा शुद्ध हृदय पवित्रता, वो तो है ही, और प्राप्ति, उपकार, भाग्य सब एक में ही आ गया। प्राप्ति क्या क्या हुई है, उपकार क्या क्या किए है, भाग्य क्या क्या हुआ है, उपलब्धि क्या क्या मिली है, उसने क्या क्या दिया है, वो सब एक में डाल दो। वितराग, विषयम, वैराग, और सबसे पहले ये समझना है भगवान को प्यार अर्थात क्या। भगवान से प्यार अर्थात उसकी मुरली से प्यार, एक भगवान से प्यार अर्थात उसके परिवार से प्यार, दो भगवान से प्यार अर्थात उसके यज्ञ से प्यार। यदि हम कहें कि हमारा भगवान से बहुत प्यार है परंतु इन तीन चीजों से हमारा प्यार नहीं है, भगवान से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार, इन सभी चीजों में हमको दोष दिखाई देते हैं, त्रुटियां दिखाई देती है, तो क्या इसको कहेंगे हमारा भगवान से प्यार है? ये तीनों और चारों ही बातों के प्रति हमारा प्यार बढ़ जाए। सबसे पहला मुरली से प्यार। हम कितना भी कहें हमारा भगवान से बहुत प्यार है परंतु मुरली सुनने में, मुरली समझने में, मुरली जानने में, मुरली की गहराई में जाने में हमें बहुत इंटरेस्ट नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, रस नहीं है, तो क्या कहा जाएगा कि भगवान से प्यार है? भगवान आके खड़ा हो जाए सामने और हमसे पूछे, आज मुरली में मैंने क्या सुनाया था, शाम को आके पूछे आपसे, और आपने कहा आज तो बारिश आ रही थी करके हमने सुना ही नहीं, घर में मेहमान आ गए थे हमने इसके लिए सुनी नहीं, तो बाबा कहेगा बाद में आऊंगा कभी फिर से। सोचो, भगवान आपके घर आया और असंतुष्ट तो नहीं कहेंगे उसके लिए, चला गया लौटकर, प्रवेश नहीं किया अंदर, और अब पता नहीं वापस कब आएगा भी या नहीं। हो सकता है हमसे योग्य उसके कितने ही बच्चे हो, क्यों आएगा फिर हमारे घर में, हम तो अयोग्य अपात्र हो गए ना, कभी भी वो आ सकता है। स्वयं को ऐसा तैयार रखना है। तो भगवान से प्यार अर्थात उसकी मुरली से प्यार, उसकी मुरली से प्यार अर्थात मुरली के एक एक शब्द से और एक एक वाक्य से प्यार, ऐसा प्यार है, या प्यार केवल डायरी तक लिखने में ही सीमित रह गया है? क्या हम उसके लिए करें? दादी जानकी जब पहली बार पहले ज्ञान में आए, 21 साल की उनकी उम्र थी, और आते ही उनको पता चला कि बहुत लेट हो गया है। तब जब उनके पहले दादी प्रकाश मणि, मम्मा ये सब आ चुके थे, उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा मैं ऐसा क्या करूं कि ये सारे लोग तो मेरे से आगे हैं, मैं क्या करूं जो मैं आगे चले जाऊं? बाबा ने कहा, बच्ची मुरली को कितनी बार बाबा ने कहा कितनी बार पढ़ो मुरली को? 12 बार पढ़ो, कोई लोग कहते 5 बार, पर दादी ने कहा मैं 20 बार अगर पढ़ू तो। क्या है उसमें ऐसा? संसार का संपूर्ण ज्ञान, ईश्वर का संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण मनोविज्ञान, सब कुछ उसमें है। मुरली जो है वो वर्ल्ड टाइम्स है, वो होता है टाइम्स ऑफ इंडिया, ये जो है ये वर्ल्ड टाइम्स है, सब कुछ है इसमें, विश्व के आदि मध्य अंत ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है इस संसार में जिसकी चर्चा बाबा ने आप तक की नहीं है। हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट, इतना हमारा उससे प्यार होना चाहिए तो ही हम कहेंगे हमारा बाबा से प्यार है, या उतना प्यार उससे अगर बढ़ जाए, अभी जितना मुरली से प्यार है कल उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्यार बढ़ गया। तो मुरली से प्यार बढ़ जाना अर्थात बाबा से प्यार बढ़ जाना, सीधा हिसाब है। तो तीसरा पॉइंट में चार बातें हैं। सबसे पहला मुरली, केवल लिखना नहीं पर उतने ही प्यार से उस मुरली को सुनना, उसी भाव में स्थित होकर मुरली को सुनना, समान में स्थित होकर मुरली को सुनना। एक सुंदर अभ्यास ये भी है, मुरली सुनते समय ये सोचना कि मैं आत्मा अभी अभी इस तन में आई हूं, मैं आत्मा अभी अभी परमधाम से इस तन में आई हूं, और शिव बाबा अभी अभी उस ब्रह्मा तन में आकर मुरली सुना रहा है और मैं सुन रहा हूं। ये छोटा सा अभ्यास है। कब करना है इसे? सुबह सुबह मुरली सुनते समय क्या सोचेंगे? शिव बाबा आकर अभी अभी आया है उस तन में, और मुझ और मैं आत्मा भी साथ साथ, उधर से दोनों साथ में ही निकले थे, वो उस तन में गया मैं इस तन में आई, वो सुना रहा है मैं सुन रहा हूं। ये अभ्यास है, एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, भगवान स्वयं टीचर बनकर मुझे पढ़ा रहा है। मुरली सुनने से पहले ये दो में से कोई भी एक अभ्यास कर सकते हैं, और उसके बाद ही मुरली सुने। पहले तो स्वयं को समान में स्थित कराना है और उसके बाद सुनना है। और केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, सुनने के बाद उसको पढ़ना भी जरूरी है। मुख्य मुख्य टॉपिक्स क्या थे उसमें, वो निकालना, उसके ऊपर मनन करना, उसके ऊपर चिंतन करना, उसके ऊपर चर्चा करना। इस क्लास में ऐसे कितने हैं जो रोज की जो मुरली चलती है उसके ऊपर दिन भर में या शाम को या रात में बैठकर चर्चा करते हैं, डिस्कशन अकेले करते हैं या एक दो मिलके करते हैं? सभी को करना है ये कार्य। तब तक मुरली की बातें क्लियर नहीं होगी, क्योंकि ये नॉलेज बहुत फिलोसॉफिकल और बहुत ऊंचा ज्ञान है। ये केवल एक बार सुनने से या एक बार पढ़ने से क्लियर नहीं होता है, कई सारी इतनी सूक्ष्म बातें हैं उसमें कि उसका डिस्कशन चाहिए, चर्चा चाहिए, उसके ऊपर मनन करना होता है, चिंतन करना होता है, तो ही वो बातें क्लियर होगी। तो एक कार्य जो सबको करना है, चाहे घर पे या कहीं और, दो लोग या दो से ज्यादा, अपना ही एक संगठन तैयार करना है। किस लिए तैयार करना है? चिंतन के लिए, मुरली चिंतन ग्रुप। व्हाट्सएप वाला ग्रुप नहीं, मुरली चिंतन ग्रुप, जिसमें बैठकर चर्चा की जाए। आज बाबा ने क्या क्या कहा, आज प्रश्न क्या था, अगर प्रश्न में एक उत्तर दिया है और क्या क्या हो सकते हैं। एक उत्तर से संतुष्ट नहीं हो जाना, और क्या क्या हो सकते हैं। मुरली में एक ही प्रश्न है और एक ही उत्तर है, हम उसमें से 10 नए प्रश्न निकाले, ये कार्य करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? मुरली से प्रेम, वैसा प्रेम हो जैसे गोपियों को था। गोपियों को दिखाया ना कैसी अवस्था थी गोपियों की, घड़ा भर रही है वो पानी बहा जा रहा है, काजल लगा रही हो, काजल कहां के कहां जा रहा है, शुद्ध बुद्ध सब बिसरी, कुछ पता ही नहीं उनको क्या हो रहा है, ऐसी दीवानी और ऐसी मस्तानी, ऐसी इतनी लगन हमको इसके प्रति हो। ये तभी होगा जब उसे समझने का प्रयत्न करेंगे, वो संगीत लगे, वो गीत लगे। मुरली है क्या? गीता ही है ना, गीता ही तो मुरली है, और तो दूसरी कुछ है नहीं। तो वो हमें उस तरह लगे। दिखाया है भागवत में श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं, किस लिए? गोपियों को ज्ञान सुनाने के लिए, क्योंकि उद्धव समझता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, उद्धव समझता है मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, उसके लिए उसका अभिमान तोड़ने के लिए दिखाया है, उसको वो गोपियों के पास भेजते हैं। उद्धव जब आता है यमुना पार करता है तो दिखाया उसे गर्मी होने लगती है, क्योंकि उसके पास तो जैसे कि ज्ञान की ज्ञान का ताप होता है तपत, परंतु जब गोकुल पहुंचता है यहां तो अग्नि होती है कृष्ण विरह और कृष्ण प्रेम की। और वो गोपियों को समझाता है, 6 मास तक समझाते रहता है कि ये जिसे जिसके पीछे तुम पागल हो वो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, वो ब्रह्म है, वो इस धरती पर आया है। पर गोपियां क्या कहती है? हमें इस बातों से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे साथ यहां पर खेला था, यहां उसने बांसुरी बजाई थी, ऐसी उनकी अवस्था है। कृष्ण ध्याति गीति कृष्ण ध्याति चित्ति हेची कृष्ण होती कृष्ण ध्याने, कृष्ण का गुणगान करते करते कृष्ण का ध्यान करते करते स्वयं ही कृष्ण हो गई है। एक एक गोपी कहती है कि मैं ही कृष्ण हूं, ऐसी अवस्था है उनकी। इतना प्रेम उस मुरली के प्रति, उस मुरलीधर के प्रति। इस प्रेम के आगे सारे प्रेम संसार के विलीन हो जाएंगे, वैराग लाना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही हृदय में वैराग जन्म लेगा। ये संसार और उसके लोग और उसकी प्राप्तियां स्वतः ही गौन हो जाएगी। परंतु ऐसा प्रेम हम उत्पन्न करें तो पहला मुरली, दूसरा परिवार, ये सबसे बड़ा काम है। बाप से प्यार अर्थात उसके परिवार से प्यार। यह आश्चर्य की बात है, ये जो परिवार है इसमें सारी देवकुल की आत्माएं हैं, सभी ने लगभग 84 जन्म लिए हैं, परंतु भिन्न भिन्न संस्कार वाली है और सब एक जगह एकत्र आई है, और यही आत्माएं जन्म जन्म साथ रही है। इसके लिए इनके बहुत सारे आपस में ही हिसाब किताब है, और वो यहां ईश्वरीय परिवार में आने के बाद, बाबा के बनने के बाद ही ज्यादा से ज्यादा चालू होते हैं, और उन हिसाब किताब के बीच में ही रहकर यह ब्राह्मण जीवन आगे बढ़ाना है और इसमें उन्नति करनी है और संपूर्णता को पाना है। जो भी पेपर्स आएंगे, अधिक से अधिक पेपर किससे आएंगे? वो बाहर वाली आत्माओं से नहीं आएंगे, वो जो देवी देवता कुल की है ही नहीं, हो सकता है उनके घर में जन्म मात्र लिया है, पर उनके द्वारा जो पेपर आ रहे हैं बहुत ही छोटे हैं। अधिक से अधिक पेपर ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकतु होंगे, ईश्वरीय महावाक्य है। जैसे जीवन की यात्रा है वैसे हिसाब किताब की भी यात्रा है, उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका भी एंडिंग पॉइंट है, पहले भी बताया था। इसके लिए सबसे पहली बात तो इस परिवार से प्रेम का भाव रखना है, चाहे कैसा भी है, परंतु इसी परिवार में रहकर हमें संपूर्ण बनना है। इस परिवार की किसी भी आत्मा के प्रति हमारे मन में घृणा ईर्ष्या नफरत द्वेष जलसी इस तरह का कोई भी भाव नहीं हो, क्योंकि इन्हीं के साथ हमें केवल इस जन्म में नहीं, वो जब देवता बनेंगे तब यही साथ में रहेंगे, वो द्वापर से भी यही लोग साथ में रहने वाले हैं, सारे ही 84 जन्म यही आत्माएं हमारे साथ चलने वाली है भिन्न भिन्न नाम और रूप में। इसके लिए जो हिसाब किताब है उसको वहीं रोक दो और नए हिसाब किताब नहीं बनाओ, फ्रेश बॉन्डेजेस क्रिएट नहीं करना है। जो बॉन्डेजेस है, जो बंधन है, उसको वहीं रोक के या फिर उनको समाप्त करने का प्रयत्न करना है योग से, जो कि आज की मुरली का दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट कर्म बंधन को तोड़ना है। तो दूसरी विधि है इस परिवार से यदि प्रेम तो बाबा से प्रेम। बाबा ने कहा है ये प्रभु परिवार है। ये क्या है? प्रभु परिवार। इस प्रभु परिवार में प्रेम। सबको किस दृष्टि से देखेंगे? एक तो आत्मा देखेंगे और भाई भाई देखेंगे और ये सर्व आत्माएं मेरे स्नेही सहयोगी है और इससे भी ऊंची दृष्टि सभी परमात्मा के बच्चे हैं और हाँ ये सबसे किसने कहा? सबसे श्रेष्ठ पॉइंट ये है ये देव कुल की महान आत्माएं हैं सभी। ये कोई साधारण आत्माएं नहीं है, उस परम कुल की आत्माएं हैं, उस दैवी कुल, उस दैवी संप्रदाय, उस दैवी परिवार की आत्माएं हैं। ये डायरेक्ट भगवान द्वारा चुनी हुई आत्माएं हैं। इनका चयन किसने किया है? स्वयं भगवान ने। क्यों किया? जरूर उसने कुछ देखा होगा उसमें, ऐसी कोई विशेषता उसमें होगी। कुछ संडे, कुछ दिनों पहले मुरली चली थी ना, धर्म नेता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, राज सत्ता, शास्त्रवादी, इस दुनिया के बड़े बड़े टाइटल वाले किसी ने नहीं जाना जो इन बच्चों ने जाना। ये उनकी विशेषता बाप देखते हैं। सभी ने बाप को जानना, बाप का बनना, बाप से मिलन मनाना। वो लोग तो केवल क्या कर रहे हैं? आह्वान कर रहे हैं। वो वैज्ञानिक अपने ही इन्वेंशन में खोए हुए, उनको बाप की बातें सुनने की जानने की फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। वो शास्त्र वाले अपने ही हिसाब लगाने में बिजी है, वो धर्म सत्ता वाले अपने ही धर्म को संभालने में बिजी है, कहीं प्रायलोप ना हो जाए। याद आई मुरली? अभी अभी चली थी। राजनीति वाले अपनी कुर्सी संभालने में लगे हुए हैं। तो ये सब कितनी महान आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को जान लिया। उनके पास डिवाइन इंटेलेक्ट नहीं है, दैवी बुद्धि नहीं है। दैवी बुद्धि से बाबा को जाना जा सकता है। हो सकता है यहां पर वो अनपढ़ है, गंवार है, जाहिल है, कुछ समझ में नहीं आता है उसको, कोई गुण नहीं हमको दिखाई देते। परंतु सबसे बड़ी उसकी विशेषता कौन सी है जो शंकराचार्य ने नहीं जाना? वो बाल ब्रह्मचारी शंकराचार्य जिसे नहीं जान पाया, वो पूप जिसे नहीं जान पाया, वो हिमालय पर बैठा हुआ तपस्वी जिसे जान नहीं पाया, उसको इस कुमार ने जाना है। जाना है ना? हाँ कह रहा है। तो ये कुमार खड़े रहना जरा, सबसे महान है। और वो बाकी भी दो, आप भी। तो ये जो आत्माएं हैं ये कोई साधारण आत्माएं नहीं है। ये जो आत्माएं दिख रही है जन जन्म की महान आत्माएं हैं। पता नहीं कैसी कैसी संसार को हिलाने वाली भक्ति इन्होंने की थी, कौन से समाज में क्रांतिकारी बदलाव जिन्होंने लाए थे, भगवान के प्रति क्या क्या त्याग इन्होंने किए थे, वो आत्माएं आई है यहां। इसलिए इनको साधारण समझने की महाभूल नहीं करना। केवल ये नहीं, सभी जो जो यहां आता है, जिस जिसने भगवान को जाना है, पहचाना है, माना है, मिलन मना रहा है, वो सभी बहुत श्रेष्ठ आत्मा है। इसके लिए इस परिवार के प्रति कुछ भी देखते हुए कभी भी मन में जरा भी व्यर्थ नहीं आने देना। बाबा ने कितनी बार इस परिवार की महिमा की है, क्या वो नहीं देखता है कि इसमें तो कईयों में बहुत अवगुण भी दिखाई देते होंगे? वो देखता ही नहीं है, वो केवल एक ही देखता है कि इन्होंने मुझे पहचाना। अवजानंती माम मुढ़ा, गीता में वचन है, हे अर्जुन, जो अज्ञानी है, जो मूढ़ है, जो मूर्ख है, वो मुझे पहचानते नहीं है। Only my sheep will hear my voice. मेरी जो भेड़े हैं, मैं चरवाहा हूं, केवल मेरी जो भेड़ है वही मेरी आवाज को सुनेंगी, बाकी नहीं। जो इस झाड़ के पत्ते हैं केवल वही आएंगे। तो जो भी यहां आए हैं ये सभी कौन है? इस ईश्वरीय झाड़ के पत्ते हैं, इस दैवी परिवार की आत्मा है, संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, होलीएस्ट इन द वर्ल्ड, ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसी ये सारी आत्माएं यहां पर आई है। इसके लिए एक मुरली बाबा ने अव्यक्त वाणी है जिसने कहा है, वर्तमान किसी के भी स्वभाव संस्कार को नहीं देखो। वर्तमान जो भी स्वभाव संस्कार है, बहुत पावरफुल पॉइंट है ये, वर्तमान स्वभाव संस्कार को देखना ही नहीं है तुम्हें। तुम्हें किसको देखना है? अनादि और आदि संस्कार। बस अनादि संस्कार है ये शांत स्वरूप आत्मा है, प्रेम स्वरूप आत्मा है, पवित्र स्वरूप आत्मा है अनादि। आदि संस्कार देवता है, यही देखना है तुम्हें। वर्तमान जो स्वभाव संस्कार दिख रहा है इसे देखना ही नहीं है। और बाबा ने अपना ही उदाहरण दिया था, बाप हर बच्चे को अपने अनादि स्वरूप में देखता है, इसके लिए उसमें कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलते उसके। तो इस परिवार से प्यार, इस प्रभु परिवार से प्यार अर्थात परमात्मा से प्यार। तीसरा, यज्ञ, इस यज्ञ से प्यार। हम सभी यज्ञ रक्षक है, ये यज्ञ किला है, एक दुर्ग है, जिसके अंदर अगर हम हैं तो विकर्मण नहीं होंगे। इस दुर्ग से बाहर जाओ तो दुश्मन है, इस दुर्ग से बाहर जाओ तो चारों ओर माया का साम्राज्य है, पाप होंगे, विकर्म होंगे, दुष्कर्म होंगे, कुकर्म होंगे। पर यदि इसके अंदर हम रहे, इस दुर्ग के, इस किले के, इस फोर्ट के अंदर, तो पाप नहीं हो सकते। तो स्वयं को क्या समझना है? मैं यज्ञ रक्षक हूं। और यदि इस किले से कोई दूसरी आत्मा भी बाहर जाती है, उसका बोझ भी हमारे ऊपर है। अगर हमारी वजह से जा रहा है, अगर हमारी चलन देखकर कोई आत्मा जा रही है, बाबा ने एक वरदान में कहा था, ये जो किला है इसमें क्या कर दो, एक लाइन खींच दो, अगर कोई जाने की कोशिश भी करे तो उसको करंट लगे, जा नहीं पाए। ऐसे पावरफुल वाइब्रेशंस बना दो। हो सकता है हमारे ही कोई चलन को देखकर कोई ज्ञान छोड़कर चला गया। इसके लिए हम सबका सम्मान क्या है? मैं यज्ञ रक्षक हूं। और स्वयं को यज्ञ के अंदर समझना है, चाहे आप यहां रहते हैं, चाहे आप अपने घर गृहस्थ में रहते हैं। मैं कौन हूं? यज्ञ रक्षक हूं। अपना जो घर है उसको भी यज्ञ ही समझो। अपने घर को क्या समझो? यज्ञ। और स्वयं को आज की मुरली से ट्रस्टी। तो तुम जो भी बनाओगे खाओगे, समझो कि हम कहां से खाते हैं? शिव बाबा के भंडारे से ही हम खाते हैं। जो भी हमें मिलता है सोचो ये बाबा ने हमें दिया है। छोटी से छोटी वस्तु जो घर में आती है पहले उसको दे दो और फिर लो, चाहे वो कपड़े हो या और कुछ हो। ऐसे समझो हमें यज्ञ से मिल रही है, ऐसे समझो स्वयं भगवान हमें दे रहा है, ऐसे समझो स्वयं दादियों के हाथों से ये साड़ी हमें, ये कपड़े हमें मिल रहे हैं। अब ये जो वस्त्र मैं पहन रहा हूं ये कोई साधारण वस्त्र नहीं है, ये यज्ञ से प्राप्त वस्त्र है। हमारी पालना, सभी लिख के रखे इस वाक्य को, हमारी पालना यज्ञ से हो रही है। हम यज्ञ रक्षक हैं और हमारी पालना, मेरी पालना स्वयं भगवान कर रहा है। यज्ञ से मेरी पालना है, किसी के पैसे से नहीं है, किसी देहधारी मेरी पालना नहीं कर रहा है, कोई पति नहीं कर रहा है, कोई पत्नी नहीं कर रही है, कोई ऑफिस नहीं कर रहा है, कोई मैनेजर नहीं कर रहा है, कोई बॉस नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? स्वयं भगवान मेरी पालना कर रहा है। मेरा जिम्मेवार स्वयं वो है। परिवार, और ये था यज्ञ से प्यार। यज्ञ की रक्षा करनी है हमें, यज्ञ रक्षक यज्ञ भक्षक न बन जाए। यज्ञ रक्षक यज्ञ भक्षक न बन जाए। इसकी रक्षा करने वाले खुद ही ट्रेटर न बन जाए। इसकी रक्षा करने वाले खुद ही ऐसा काम न कर दे जिससे यज्ञ की ग्लानि हो। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे संस्था की बदनामी हो। संस्था छोटा शब्द है, यज्ञ बहुत ऊंचा शब्द है। ऐसा कुछ ना करना करे कि जिससे लोग कहे कि यहां क्या हो रहा है। तुम लोग भी ऐसे करते हो क्या? कल की मुरली, संडे की मुरली थी ना, बर्तन बर्तन से टकराए, वो ना हो। लोग क्या कहेंगे, तुमने तो कहा था तुमने भगवान को पाया है और पाकर क्या कर रहे हो, घर में झगड़ा हो रहा है, बर्तन बर्तन से ठका टक्कर और आवाज हो रहा है। कोई ऐसा न कहे। इसके लिए हमें तो और ज्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि दुनिया वाले तो लगे हुए हैं, राह देख रहे हैं, इंतजार में है कब ये कोई गलती करे और हम इनको कुछ कहे, क्योंकि उनके अहंकार को तुमने चोट पहुंचाई है थोड़ी सी ये कहकर कि हम बहुत श्रेष्ठ है। और आपका जीवन भी देखते हैं कि वाकई में इनका जीवन श्रेष्ठ है, तो कहीं ना कहीं तो उनको लगता होगा। और कई कई ऐसे भी होंगे जो राह देख रहे हैं, ताक में बैठे हुए, कब ये गलती करे और कब इनको हम कहे, नसीहत उपदेश इनको दे कि देखा वहां गया ना इसके लिए ऐसा हुआ। हम यज्ञ रक्षक है, हमारी पालना यज्ञ से हो रही है, स्वयं भगवान मेरा जिम्मेवार है। तीन संकल्प है। और ऐसी कोई भी चलन हमें नहीं चलनी है कि जिससे इस यज्ञ की बदनामी हो, ग्लानी हो, पुलिस और कोर्ट को यहां आना पड़े। ऐसा कुछ ना करे हमारी वजह से। उसी के अंतर्गत इस यज्ञ में जो रहने वाले हैं, यहां रहने वाली जो बहनें और भाई हैं, उसके लिए हमने थोड़ी बात उस दिन भी कही थी, पर उनके प्रति सर्वोच्च आदर की भावना हो। अपने अहंकार में आकर उनके विरोध में खड़े हो जाना, ये भी इस यज्ञ की बाबा ये देखकर कभी भी खुश नहीं होगा। वो आत्माएं जिन्होंने अपना यौवन इस यज्ञ की वेदी पर समर्पित किया है, साधारण नहीं है। उनके प्रति दृष्टि में कभी भी साधारणता नहीं लाना, चाहे कितने भी हमको अवगुण दिख रहे होंगे, पर उनको वहां रखा किसने, ये हमेशा सोचना। यज्ञ से, भगवान से, तो इस यज्ञ से प्यार बढ़ेगा तो स्वतः ही भगवान से प्यार बढ़ेगा। और चौथा है मधुवन। मधुवन से प्यार अर्थात मधुसूदन से प्यार। यहां से मधुवन में जाते समय हल्के संकल्पों से नहीं जाना, चाहे किसी भी कारण से जा रहे हो, मधुवन में बाबा से मिलने जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, भट्टी में जा रहे हैं, या शिविर में जा रहे हैं, या मीटिंग में जा रहे हैं, पांचों ही कारण से, पांचों ही में से किसी भी कारण से मधुवन में जा रहे हैं, तो ये मत भूलना कि हम कहां जा रहे हैं। मधुवन अर्थात तपस्या भूमि, मधुवन अर्थात परिवर्तन भूमि, मधुवन अर्थात त्याग भूमि, परमात्मा अवतरण भूमि, संसार का सबसे बड़ा तीर्थ, शीश महल, अंतिम थप्पा लगाने का स्थान, देहत का धोबी घाट, देहत का पोस्ट ऑफिस, हजारों नाम है मधुबन के। तो ये मत भूलना कि हम कहां जा रहे हैं। जाने से पहले ही श्रेष्ठ भावना लेकर जाना। अगर हल्की भावना लेके गए और वहां पहुंचे और वहां पर भी अवगुण अगर देखने लगे, तो कभी बाबा का तो अनुभव होगा ही नहीं, ना ही उस भट्टी भी व्यर्थ जाएगी। जिस लिए गए थे और जिनको लेकर गए थे पहली बार उस पार्टी को, उन पार्टी में से किसी को भी अनुभव नहीं होगा। यदि हमारी ही मधुबन के प्रति भावना थोड़ी कम है, यदि हम ही वहां जाकर व्यर्थ देख रहे हैं या असुविधा देख रहे हैं या ये सोच रहे हैं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं वहां पर, तो जो जिनको हम लेकर जा रहे हैं उनमें कौन सी भावना उत्पन्न होगी। हम जिस भावना से लेकर जाएंगे उतना ही अनुभव जिन आत्माओं को हम ले जा रहे हैं उनको होगा। इसके लिए मधुबन से प्यार। तो सबसे पहले बाबा के उपकारों को याद करना, बाबा की महिमा करना, और मुरली, परिवार, यज्ञ और मधुबन से प्यार करना और प्यार को बढ़ाना, ये विधि है किसकी? बाबा से प्यार को बढ़ाने की। अभी हम 3 मिनट योग करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे और जो भी बातें यहां हमने चर्चा की उसमें से पहला उपकार, बाबा से कुछ बात करेंगे, उसके उपकारों को याद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, और जो चारों ही बातें बताई उसके बारे में जो बातें सुनी उनको याद करने की कोशिश करेंगे अभी अभी। ओम शांति।